आयत नंबर 15 से देखते हैं। سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا। جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے۔ پھر وہ کہیں گے بات یہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یہ بات بھی نہیں مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ نہیں تھے، چونکہ وہ دعوت سراسر ایک دینی دعوت تھی، عمرے کی نیت تھی، نہ اس میں مال غنیمت کے ملنے کا کوئی امید تھی، تو منافق جو تھے وہ نہیں گئے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد میں غزوہ خیبر کا موقع آیا۔ غزوہ خیبر کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آج ایک عام سے ملک کو کسی سپر پاور کے مقابلے میں لڑنے کا موقع ملے، اور امید یہ ہو کہ اگر جیت گئے تو اس کے بعد سارا کچھ جو اس ملک کا ہے وہ ان لوگوں کے بیچ میں بٹ جائے گا۔ یعنی خیبر کی جنگ میں بہت کچھ ملنے کی امید تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور فتح خیبر کا واقعہ غزوہ حدیبیہ کے 3 ماہ کے بعد ہوا، یکم محرم تھی 7 ہجری میں۔ اب ہوا کیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں یہود نے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی تھیں۔ کچھ نہ کچھ یہاں سے فتنہ نکلتا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی۔ ان کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو پہلے مدینہ میں رہتا تھا، وہ بعد میں انہی کے ساتھ جا کے مل چکے تھے، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے خلاف جو ان کی کوششیں تھیں اس میں تیزی آ گئی۔ ان کے سردار تھے حیی بن اختب، جیسے حی لکھتے ہیں نا الحی، تو اسی طرح لکھتے، لیکن حیی بن اختب ان کا سردار تھا، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد۔ یہ دونوں جو تھے مل کے مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب جو اس سے پہلے گزری تھی، کو خندق بھی بولتے ہیں، اس میں لڑ چکے تھے۔ یہ سب لوگ جب ملے تو اب اس وقت یہ ضرورت پیش آ چکی تھی کہ مسلمان ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں یا ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگ جو ہیں جو طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب خیبر کی زمینیں بہت فرٹائل تھیں، زرخیز تھیں، بہترین فصلیں آتی تھیں، وہاں کھجوروں کے درخت بھی تھے، باغات تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملنے کی امید تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے دعوت دی تو وہ لوگ جو پہلے نہیں گئے تھے، کیونکہ وہاں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ نہ کوئی جان مال کے خطرہ تھا نہ کچھ، ہاں مال غنیمت کی امید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر دی کہ اب ان کو مت جانے دیں۔ غزوہ خیبر میں شامل ہونے کے لیے شرط کیا لگ دی؟ کہ صرف وہی لوگ وہاں جائیں گے جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پہ شامل ہو چکے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جب نیکی کا کوئی ایک موقع چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی دوسرا موقع بھی نہیں ملتا۔ مسلمانوں کو حکم مل گیا کہ ان کو ساتھ نہ جانے دیں، تو ہمارے لیے اس میں جو عمل کی بات ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو چاہے اس میں نقصان ہو یا نفع ہو چل پڑے۔ مثلا اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ صرف بات سمجھانے کے لیے کسی کو دعوت ملے کہ فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، وہ کہیں گے کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کہیں جی فلاں مسجد میں ہو رہا ہے۔ اچھا جی صرف درس ہے، ہاں آپ وہاں آئیے۔ کیا بعد میں کوئی ریفریشمنٹ ہوگی؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کئی لوگوں کو جانا مشکل لگتا ہے، اب کیسے جائیں، وہاں جائیں گے، پھر اچھا اتنی دیر بیٹھیں گے، اچھا گھر جا کے کھانا کھانا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی کو کوئی انویٹیشن ملے کہ شہر کے 5-سٹار ہوٹل میں ایک لیکچر ہو رہا ہے اور فری انٹری ہے، اور وہاں بعد میں بہترین قسم کا لنچ ہوگا یا ڈنر ہوگا، تو فرق ہوتا ہے نا جانے والوں میں۔ بعض لوگ جب کوئی بھی درس یا کوئی ایسی چیز ارینج کرتے ہیں تو وہ کھانے پینے کا ضرور اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کرنا چاہیے، ان کا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے اور سنت بھی ہے۔ لیکن آنے والوں کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے اگر وہاں کوئی امید نہیں ہوتی۔ یا بالفرض اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ بعض وہ درس ہوتے ہیں کہ بس آئیے اور بیٹھ کے سن کے چلے جائیے، کوئی لائبلٹی نہیں، کبھی ایک درس ہو گیا، کبھی دوسرا ٹاپک ہو گیا۔ उसमें लोग खुशी से जाते हैं। लेकिन उन्हें कहा था किसी क्लास में आए, बाकायदा क्लास है, अच्छा नोट्स लेने पड़ेंगे, अच्छा लिखना पड़ेगा, फिर और आप चाहेंगे तो आपको सबक भी सुनाने की मौका दिया जाएगा, फिर आपको टेस्ट भी देने होंगे। तो फिर इस चीज़ के साथ लोग पीछे हो जाते हैं। लोगों की अक्सरियत जो होती है ना, वो आराम पसंद होती है, वो मुश्किल नहीं बर्दाश्त करना चाहते। हालांकि कोई दुनिया का ऐसा स्कूल नहीं है कि बच्चे पूरा साल स्कूल जाए और ना वहाँ कोई टेस्ट हो, ना कोई बुक्स हो, ना कुछ हो। माँ बाप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा स्कूल है कि जहाँ पे ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना कोई पढ़ा रहे हैं। दुनिया के में आप देखिए कि अमूमन दीन का काम ऐसे ही होता है। कई लोग कितने सालों से दरसों में भी जा रहे हैं, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, लेकिन ठुक के एक चीज़ नहीं करना चाहते। हालांकि बच्चों को आप जब तक एक से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी में नहीं करेंगे, तो वो कभी भी फिर किसी आला जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोग जो पीछे रह गए थे, जब तुम माले गनीमतों की तरफ, यानी ला मगानिम से मुराद जहाँ खैबर की ज़मीनें थी, गनीमत की जमा है, यानी वो जगह जहाँ से बहुत माले गनीमत मिलने की उम्मीद है, जब तुम वहाँ जाने लगोगे तो ये क्या कहेंगे, ज़रूना नत्तबिकुम, हमें छोड़ो, हम भी तुम्हारे पीछे जाना चाहते हैं, खुशी से जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं युरीदू नहीं युबद्दिलु कलाम अल्लाह, क्या अल्लाह का हुक्म बदलना चाहते हैं? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था नबी को कि इनको मत जाने दो। इन्होंने एक मुश्किल वक्त में अपने आप को पीछे कर लिया, या ये किसी कशिश के बगैर दीन की तरफ नहीं आते तो इनको पीछे कर दो। ये जाने की जिद करके असल में अल्लाह के हुक्म को बदलना चाह रहे थे। यानी अल्लाह का हुक्म या फैसला क्या था कि वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस हैं, जो सिंसियर लोग हैं, अल्लाह इनको फतह और नुसरत से हमकिनार करे और माली फायदे भी उन्हीं को मिले। लेकिन मुनाफिक क्या चाहते थे कि जान और माल के नुकसान का खतरा हो तो बहाने बनाकर अपनी जानें और अपने माल बचा ले। हमारे घर बड़े बिजी हैं, हमें हमारे घरों ने और हमारे मालों ने मसरूफ कर दिया, ये कहकर पीछे हो जाए, और जहाँ जान और माल के जाने का खौफ ना हो बल्कि नफ़े की उम्मीद हो तो वहाँ ये जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कुल नत्तबेऊना, कह दो हरगिज़ नहीं, नेवर। देखिए लन का लफ्ज़ है, एक होता है ला, नो इंग्लिश में, और लन है नेवर, कभी भी नहीं, यानी तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, इसलिए कि अल्लाह पहले ही ऐसी बात फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला ने पहले ये बता दिया था कि इनको मत जाने दो। अब आप देखिए कि ऐसी बात सुन के उनको शर्मिंदा होना चाहिए था ना, अफसोस का इजहार करना चाहिए था कि देखे हम कितने बदकिस्मत हैं, हमने नेकी का एक मौका छोड़ा तो अब हमसे दूसरा भी छीना। लेकिन जिसकी सोच उल्टी होती है ना, वो हर बात को उल्टे मानों में लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं देखो इस बात को वो नेगेटिव लेंगे, बैड फील करेंगे, क्या कहेंगे, फसयकूलूना बल तहसुदूनना, फिर वो ये कहेंगे ये बात नहीं बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। यानी ये मुतखल्लफीन कहेंगे कि तुम हमें हसद की बुनियाद पे साथ नहीं ले जा रहे। देखिए जरा कोई बात बनती है हसद की? तुम नेकी में पीछे रह गए तो इसमें हसद की क्या बात है? यानी इसमें एक नेगेटिव अप्रोच वाले शख्स की बात है। और दुनिया में कुछ लोग हकीकत में बहुत नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। जब आएंगे वो बुरी खबर ही लेके आएंगे, आएंगे तो दिल तोड़ने वाली बात ही करेंगे। जब उनसे किसी का हाल पूछो वो कहेंगे सारे ही खराब है, सारे ही बुरे हैं, कुछ भी नहीं है। न शुक्रे किस्म के आप लोग कह ले, पूरी नहीं पड़ती है ही कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं है। किसी का अगर मशवरा ले ले उनसे तो वो कहेंगे ना 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 ये काम ना कीजिएगा। ऐसे लोगों से बहुत बचना चाहिए जिनको अपनी भी गलती दूसरे की लगे। हमें तो कोई बताता ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता घर में क्या हो जाता है। यानी वो खुद ही पीछे रहने वाले, लेकिन जब कोई मौका आता है अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे पे इल्जाम करना कि जी हाँ आप तो बस हमसे हसद करते हैं, हम नजर आगे हो जाएं, हम नजर आगे बढ़ जाएं, आप तो हमें इसलिए आगे नहीं लेके जाते। बाज दफा क्या होता है कि कोई रूल होता है ना, तो उसको इसलिए बनाया जाता है कि दूसरों का ही फायदा हो। अब जब आप कोई रूल बनाते हैं ना, तो बाज लोग तो बड़ी खुशी से उसको फॉलोअप करते हैं कि भाई बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग रूल्स को फॉलो करने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। लिटरली हमें ऐसा कई दफा मामला पेश आता है कि जब आप किसी को थोड़ा सा भी कहे ना कि ये रूल है आपके लिए नहीं, ये सबके लिए, तो कहेंगे अच्छा रखो फिर तुम, हम नहीं आते तुम्हारे पास, हम तो बच्चे को इधर ही बिठाएंगे, और हम तो ये, हम तो वो। यानी इस किस्म की बातें लोग करते हैं कि फिर ऐसे लोगों के साथ क्या है कि फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बजाय गलती मानने के कहेंगे तुम हमसे हसद करते हो, नहीं बल कानू, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं हकीकत क्या है कि ला यफ़क़हूना इल्ला क़लीला, ये लोग हकीकत को समझते ही नहीं है, यानी ये बहाने बनाने वाले, इनको ये हकीकत समझ ही नहीं आती कि इनसे हसद क्यों करना है कि तुम्हारे पास चार पैसे आ जाएंगे, तुम्हें माले गनीमत मिल जाएगा तो हम तुमसे हसद करेंगे, ये बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि तुम असल बात सुनना ही नहीं चाहते। इससे पता चलता है कैसे लोग फिर समझ से भी खाली हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सर नहीं फोड़ना चाहिए, अवॉइड करना बेहतर होता है। कुल लिल मुखल्लफीन मिनल अराबी, कह दीजिए उन पीछे रहने वालों को अराबियों में से। अराबी कौन थे? देहातों में रहने वाले विलेजर्स, देहाती गांव के लोग, बदवी उस दौर में उनको बोलते थे। इन अराबियों को कह दें जो पीछे रहे। सतुद औउन इलल कौमिन, अन करीब तुम बुलाए जाओगे, यानी तुम्हें दावत दी जाएगी एक कौम की तरफ। उली बासिन शदीदिन, बहुत ज़्यादा सख्त जंगजू कौम से मुकाबले के लिए। फिर तुकातिलू नहुम ओ युस्लिमोन, फिर तुम्हें इनसे लड़ना होगा या वो मती हो जाएंगे। फ़ैन तुती ऊ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, इस वक्त अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर अता करेगा। वैन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन कब्ल, और फिर अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसे पहले मुंह फेरा था, तो युअज्जिबकुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह तुमको अजाब देगा दर्दनाक अजाब। अब देखिए कि अल्लाह ताला इन लोगों की कैसे माइंड सेटिंग करते हैं। कहा देखो खैबर में तो तुम नहीं जा सकते, वहां से तो माल मिलने की उम्मीद है, तुम शौक से जाते हो। बाकी रह गई बात कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है जिहाद करने का, थोड़ा सा इंतजार करो, अल्लाह इसके बाद और एक जिहाद का मौका लाएगा। पहले से फ्यूचर की फोरकास्ट कर दी गई, खबर दे दी गई कि एक कौम है जिसके साथ तुम्हारा मुकाबला होगा, और फिर तुम वहां अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना। लेकिन असल में तो देखे कि ये लड़ने के लिए तो जाने ही नहीं चाहते थे, ये तो माले गनीमत के लिए जाना चाहते थे ना। तो अल्लाह ने इनके दिल के चोर को खोलते हुए साबित किया कि देखो इसमें तुम नहीं जा सकते, खैबर के अंदर तो तुम नहीं जा सकते। बस बात खत्म हो गई, अल्लाह ने जो बात कह दी वो तो हो गई। हाँ अन करीब तुम्हारी लड़ाई होगी, किस कौम से होगी? उली बासिन शदीदिन, सख्त झगड़ालू कौम से। ये कौम सी थी? कौम एक कबीला था, सकीफ कबीला, ख्वाजन और बनू हनीफा, ये तीन कबीले थे। बहुत ज्यादा तीर अंदाज कबीले थे, झगड़ालू थे और लड़ने के लिए बहुत शेर थे। फ्यूचर में इनके साथ भी मुसलमानों की एक जंग होने वाली थी, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस लड़ाई में करना, और इनके साथ जंगे हुनैन हुई थी जिसका तذکرہ आगे जाके भी आएगा। और जो बनू हनीफा था ये मुसैलमा कज़्ज़ाब का कबीला था जिसने नबूवत का दावा कर लिया था, बाद में इसके साथ मुसलमानों की लड़ाई हुई। और इसी तरह कुछ और नाम भी जो आते हैं, फारस और रूम के मजूसी और ईसाई भी बाज ने मुराद लिए, तो कहा कि फिर तुम उनसे लड़ना, अभी तुम नहीं लड़ सकते, फिर लड़ो। तो कातिलू ना हो, तुमसे लड़ाई करोगे, यानी आमने सामने लड़ाई होगी, नहीं तो औ युस्लिमून, या वो मती हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जब उनको जंग की दावत दी जाएगी तो दो में से एक काम होगा, या तो वो जंग किए बगैर ही तुम्हारी इताअत कबूल कर लेंगे, इसके भी दो मानी हो सकते हैं, यानी एक तो जिजिया देकर मुसलमानों के रास्ते से हट जाएंगे, मुसलमानों को तंग नहीं करेंगे, और दूसरी बात है कि वो मुसलमान हो जाएंगे। यहाँ एक छोटी सी बात समझ में आती है, और नबी सल्लम का एक बड़ा प्यारा असूल था कि जब भी किसी सहाबी को जंग के लिए भेजते थे ना, तो साथ नसीहत करते थे कि देखो एकदम जाके दुश्मन पे हमला ना करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो जब खैबर के लिए जा रहे थे, तो आपने कहा कि अली हमला करने से पहले उन लोगों को कलमे की दावत देना, यानी तबलीग करना, इस्लाम की नुमाइंदगी करना, उनको कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर लड़ने का कोई इरादा ना करना, वापस आ जाना। और कहा अगर तुम्हारी दावत से एक शख्स अल्लाह के दीन की तरफ आता है तो तुम्हारे हक में 100 सुर्ख ऊँटों के मिलने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जंग की सूरत में तो माले गनीमत मिलता है ना, लालच भी तो एक पड़ जाता है ना कि चलो जी हमें क्या, मुसलमान होते हैं नहीं, अच्छे काफिर रहेंगे, हम इनसे लड़ के इनका माल हथिया लेंगे। अब जब लड़ते तो उसमें माल मिलने की उम्मीद होती, और अगर मुसलमान होते तो कुछ भी नहीं मिलना था, वो मुसलमान हो गए। तो कहा देखो गम ना करना कि कहीं इनके मुसलमान होने की वजह से इनके साथ लड़ाई ना हुई और माले गनीमत ना मिला तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये तुम्हारे हक में सुरखूंठों के मिलने से बेहतर होगा। यहाँ से हमें इस्लाम का मिजाज भी दिखता है, और वो क्या कि इस्लाम लड़ाई को पसंद नहीं करता। आज जो इस्लाम के ऊपर एक इल्ज़ाम है ना टेररिज्म का, और मुसलमान जो होते हैं वो होते ही बड़े सख्त हैं और झगड़ालू हैं, और हमारे नबी पर एक इल्ज़ाम भी है कि इन्होंने इस्लाम तलवार के ज़रिए से फैलाया है, तो ये दुरुस्त नहीं है। आज के दौर की जंगों को और नबी से सल्लम के दौर की जंगों को आप आमने सामने रख के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब जंगें होती थी सिर्फ उन लोगों के साथ, लड़ाई होती थी जो आपके सामने आ गए आपको मारने। अगर कोई आपको मारने आ जाए तो आप फिर ये तो नहीं कहेंगे आओ मुझे मार लो, फिर तो दिफा करना ही पड़ेगा ना। ये एक बात हुई। फिर दूसरी क्या होती थी कि जो लोग जाते थे उनकी अपनी भी तो जान को खतरा होता था ना, मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। आज के दौर में देखिए जो जंगें होती हैं या जिन मुल्कों पर हमले होते हैं, हमले करने वाले खुद बुलेट प्रूफ बिल्डिंग्स में बैठे होते हैं, एक बटन दबाते हैं और बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं। किसी को नहीं पता वो अपने घर में है, मस्जिद में है, किसी मंदिर में है, मस्जिद में, जब उसके ऊपर बॉम्ब गिरेगा तो वो मर जाएगा। यानी आज के दौर की जंगें ज्यादा बेरहम है, बेगुनाह लोग मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, औरतें भी, हक ना हक जाता है। उस दौर में अल्लाह के नबी हुक्म देते थे किसी औरत पे हमला ना करना, किसी बच्चे को ना मारना, जो उन मंदिरों में या जो इबादत खानों में प्रीस्ट है उनको ना मारना, जो तुम्हें नहीं कुछ कहता तुम भी उसको कुछ ना कहना, सिर्फ वो ग्रुप जो तुम्हारे सामने आके लड़ता है तुम उनके ऊपर कब हाथ उठाओ, जब वो तुम्हें मारने को तैयार है। यानी अगर हम सिर्फ ये टॉपिक पढ़ के देखें तो इस्लाम के चेहरे पे लगे हुए कितने ज्यादा इल्जाम हैं वो धुल सकते हैं। आज के दौर में तो बेरहमी का दौर है, फिर जंगी कैदी जब आते थे तो उनके साथ जो मामले होते थे, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पीछे हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो फिर गम ना करो कि वो मुसलमान क्यों हो गए, खुशी मनाओ कि वो तुम्हारा भाई आग से बच गया। इस्लाम की लड़ाई काफिर से नहीं है, कुफर से है। इस्लाम काफिरों को नहीं मारना चाहता, उनके दिल के कुफर को ख़त्म करना चाहता है। और ये कैसे होगा? ये तबलीग के जरिए होगा। तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हम कलम उठा लें। अगर उम्मते मुस्लिम अपने प्यारे दीन इस्लाम को आम करे, अपने अच्छे रिचुअल्स को खोले, लोगों के सामने इस्लाम का पैगाम रखे, खुद भी मुसलमान अपनी किताब पढ़ें, समझें, फिर अमल करें, तो आप देखिए कि ये काफिर नहीं आपको तंग करेंगे। ये आज जो मुसलमानों पर हर तरफ से हमले हैं ना, ये असल में रिएक्शन है, ग्रज है उनके दिल में। तुमने इतना प्यारा दीन हमसे छुपाया हुआ है, हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। तुम खुद नहीं अमल करते, हमें नहीं बुलाते, तुम भी खत्म हो जाओ। ये असल में अंदर से एक जलन का शिकार है। आज मुसलमान तबलीग की जिम्मेदारी अदा करना शुरू कर दें, जो हमारा फर्ज था, जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया, जो आज बिल्कुल फरामोश किया हुआ है। चंद गिनती के लोग इस काम को कर लें तो कहते हैं यही काफी हो गया। हालांकि मुसलमानों का एक एक बच्चा, एक एक औरत इस काम के लिए भेजे गए कि कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई, कि तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। आज कितने लोगों को लगता है कि ये हमारा फर्ज भी है? हम तो अपने घर में ही बच्चों को ही बुरी बात से रोक लें तो भी बड़ी मेहरबानी है, वरना आज तो हम उनको भी नहीं रोकते कि नहीं खुद ही संभल जाएंगे। तो अल्लाह ताला करे ओ युस्लिमून, हो सकता है ये मुसलमान हो जाए। जब ये मुसलमान हो जाएंगे तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। फ़ाइन तुतीउ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, हाँ अगर तुम हुक्म मानोगे, यानी खैबर की लड़ाई को छोड़ो, उस जंग में जाके तुम अगर लड़ोगे अल्लाह का हुक्म मान के, तो अल्लाह फिर तुम्हें तुम्हारा अजर देगा। यानी अजरन हसना से मुराद फिर वही है कि अल्लाह ताला उस वक़्त तुम्हें या तो माल गनीमत दुनिया में दे देगा, या बात मानने के बदले में तुम्हें अल्लाह ताला आखिरत में इसका बदला दे देगा। लेकिन वाइन ततवल्लौ कमा तवल्लई तुम इन कबल, फिर भी अगर पलटोगे जैसे तुम पहले पलटे, पहले कहाँ पलटे थे? तो हुदैबिया के सफर में नहीं गए थे? तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुमने फिर भी देखा कि नहीं इस वक्त हमें नहीं लड़ना और बात ना मानोगे तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? युअज्जिबकुम अज़ाबन अलीमा, वो तुमको अजाब देगा दर्दनाक अजाब, यानी फिर पकड़ होगी। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि जो लोग मुश्किल हालात में दीन से पीछे रहते हैं उनको फिर अल्लाह ताला बाद में अच्छे दिनों में भी शामिल नहीं करता। इसी तरह देखिए दीन का जहाँ भी कोई काम होता है ना, तो शुरू में वो काम बहुत अजनबी काम होता है, बहुत थोड़े लोग कर रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में इस्लाम की दावत दी तो कोई भी नहीं था, फिर अबू बकर सिद्दीक, फिर हज़रत अली, हज़रत खदीजा उससे पहले थी, 5-6-7 लोग हुए। इनके दर्जे क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इन्होंने उस वक्त इस्लाम के काम को पकड़ा था जब कोई और करने वाला नहीं था। लेकिन बाद में इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, अल्लाह ताला कहते हैं जब अल्लाह की मदद आ गई और तुमने देखा कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगे, यानी फिर रिवाज होने लगता है, फिर लोगों को लगता है कि ये हमारी जरूरत है, वो बाद में आने वाले कभी पहलों के अजर को नहीं पा सकते। किसी भी इमारत के अंदर उसकी जो ईंटें बुनियादों में लगती है ना, वो बड़ी अहम होती हैं, वो नहीं कभी बदली जाती। दीवारों का बदल दें, पत्थर लगा लें, पंखे बदल लें, लेकिन बुनियादें कभी नहीं बदली जाती। तो इसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन की बुनियादों में लगा ले, हम वो काम करें जो अभी तक किसी ने नहीं किया। अल्लाह हमें वहाँ काम करने का मौका दे जहाँ अभी काम नहीं शुरू हुआ। हर बंदे के दिल में इसकी तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी ज़ात से कोई मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाए कहीं इर्द गिर्द। आप देखिए अब तो ख़ानदानों के ख़ानदान दीन से दूर हैं, पूरे पूरे ख़ानदानों में हमें कुछ नहीं दिखता, किसी को अभी तक कितनी दीन की बात नहीं पता। क्या पता मैं ही वो पहली शख्स पहली औरत हूँ कि जो दीन अपने ख़ानदान में दीन को सीखूँ, फिर मैं जाके उनको सिखाऊँ। अपने घर में आप पहले हो सकते हैं, अपनी बहुत सारी दोस्तों में आप पहली हो सकती हैं। अमूमन हम दुनिया के कामों में तो सोचते हैं कि हम पायनियर्स बने, हम आगे जाएँ, लेकिन जहाँ बात होती है दीन के काम की, तुम कहते हैं नहीं फिर मेरी दोस्तों में तो कोई भी ये काम नहीं करता। नतीजा क्या होता है कि दीन में हम पीछे हो जाते हैं और दुनिया में हम आगे से आगे होना चाहते हैं। इसी तरह चंद बहुत ही अच्छे खूबसूरत वाक्यात हैं कि जो गज़वे खैबर में पेश आए थे, कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये खुशखबरियाँ मिल गई थी कि खैबर फतह होगा। और ये वो सारी वही चीज़ें थी कि जिसकी वजह से ये मुनाफिक भी चाहते थे कि हमें उस जंग में शिरकत का मौका मिले। तो इसमें आप देखिए कि सुलह हुदैबिया की जो एक शर्त थी कि 10 साल तक मानो और मक्का वालों में कोई जंग नहीं होगी, तो इससे थोड़े से मुसलमान मुतमईन हो गए थे, क्योंकि जब से मक्का से मदीना में आए थे 6 साल में कई जंगें हो गई, हर वक्त इतना खौफ रहता था कि अल्लाह के नबी सल्लम जो थे वो रात को सो भी नहीं सकते थे। लेकिन जब ये पता चला कि अब मुसलमानों की मक्का वालों से लड़ाई नहीं होनी, तो अब बेहतरीन मौका था नबी सल्लम के पास दूसरे कामों को समेटने का। इसलिए आपने उसके बाद फिर नॉन मुस्लिम जो हुक्मरान थे उनको ख़त लिखे, इस्लाम की दावत दी, नजाशी को दी, फिर इस हरकल को दी, काफ़ी सारे लोगों को दी। और ये खैबर की तरफ हमले का जो आगाज़ था वो भी इन्हीं दिनों में इसलिए हुआ कि आपको ये उम्मीद थी कि दूसरी तरफ से कोई ख़राबी नहीं होगी। तो खैबर में जो यहूद के कबीले थे तकरीबन उसमें कहते हैं कि 20,000 20,000 उनके सिपाही थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड किस्म के कहले। और मुसलमानों का जो लश्कर था, ऑफ कोर्स हर जंग में मुसलमान हमेशा थोड़े ही होते थे, तो उनका एक किला था, उसका नाम था नाइम, नाइम नून अलिफ आइन मीम था। तो इस वक्त कहते हैं कि मुसलमान उस नाइम नामी किले में पहुंचे कि जब वो सब सो रहे थे। अब रात को जब मुसलमान वहां गए तो बहुत ही मौका था कि मुसलमान रात को हमला करें अचानक, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने हुक्म दिया हुआ था कि कभी रात को अचानक हमला ना किया करो। ये भी इस्लाम का एक मैनर है जंग का, रातों को हमले ना करो, सुबह होने पे हमला किया जाएगा। बावजूद इसके कि मुसलमान हमला करके फतह ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी के इस हुक्म को मुसलमानों ने सामने रखा और आपकी बात की वजह से सुबह होने का इंतजार किया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप जब किसी कौम पर जिहाद करते तो उस पर सुबह तक हमला ना करते, सुबह अगर इन लोगों में अजान की आवाज़ सुनते तो हमला ना करते, और अगर अजान की आवाज़ ना आती तब हमला करते। यानी मेक श्योर करते थे कि ये मुसलमान लोग तो नहीं है, गलती से हम कहीं मुसलमानों पे हमला ना कर दें। जब सुबह हुई तो यहूदी फावड़े टोकरियां लेकर निकले, क्योंकि वो ज़रात पेशा थे। जब उन्होंने आपको देखा तो चीख उठे और कहने लगे, अल्लाह की कसम ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो लश्कर समेत आ पहुंचे। आपने इन्हें देख कर नारा लगाया, अल्लाह अकबर, खरीबत खैबर, खैबर की शामत आ गई। फिर फरमाया, जब हम किसी कौम के आंगन में उतरे तो जिन लोगों को डराया गया इनकी सुबह मनहूस ही हो जाती है। सही बुखारी की रिवायत है। यानी मुसलमानों को अचानक देख के वो यहूदी डरे, फिर उसके बाद कहते हैं कि वो खौफजदा होकर शहर की तरफ भागे और किला जो नाइम था उसमें पनाह ले ली। उसमें यहूद का सामान रसद था, यानी खाना पीना, जैसे आज के दौर में अब ग्रोसरीज और गल्ला अनाज कह लें, इसलिए मुसलमानों ने इसको फतह कर लिया। फिर एक और छोटा किला था उसको भी फतह किया। यानी होते होते मुसलमानों ने इनके कई किले फतह किए, और हजरत अली रजी अल्लाह अनहो के हाथों से ये मार्का अंजाम हुआ था, जिन्होंने बुनियादी काम किया था, जो इनका बड़ा सरदार था उसके मुकाबले में आए। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। यानी ये खुशखबरी दे दी कि कल ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला खैबर को फतह करेगा, और अल्लाह और उसके रसूल इससे मोहब्बत रखते हैं और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। कहते हैं कि लोग सारी रात ही सोचते रहे कि कल झंडा किसको मिलेगा। तो जब अगले दिन उससे सलाम आए तो आपने कहा कि अली बिन अबी तालिब किधर आए? तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी, उनकी तो आंखें दुख रही हैं, यानी उनकी आंखें खराब थी, उस वक्त नहीं आ सके। आपने कहा उनको बुला के लाओ। जब वो आए तो आपने अपना लुआब उनकी आंखों पर लगाया और दुआ दी, तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई फौरन ही। तो आपने फिर झंडा उनको दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं उनसे उस वक़्त तक लड़ता रहूं जब तक वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं? आपने फरमाया कि आराम से जाओ, जब इनके मुकाम पर पहुंच जाओ तो इन्हें इस्लाम की दावत दो और इन पर अल्लाह का जो फ़र्ज़ है वो इन्हें बताओ, यानी नमाज रोज़े का हुक्म बताओ। अल्लाह की कसम, अगर तेरे ज़रिए अल्लाह एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो वह तेरे हक़ में सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। इससे ही बुखारी की रिवायत है। हज़रत उमर इस मौके पे कहते हैं कि मैंने कभी मनसब या ओहदे की तमन्ना नहीं की, लेकिन उस रात मेरे दिल में ये ख्वाहिश मचल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लम कल मेरा नाम पुकारें। क्योंकि ये खुशखबरी बहुत बड़ी थी ना कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं रसूल से, और अल्लाह और रसूल उनसे मोहब्बत करता है, और खैबर इनके हाथ से फतह होगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। बहरहाल हज़रत अली के हिस्से में ये नेकी आनी थी। अगले दिन वो किले पर उन्होंने हमला किया तो उधर से मरहब नाम का एक शख्स जो उनका लीडर था वो सामने आया। बहुत बहादुर था, शेरों का मुकाबला हुआ, उसने अपनी बहादुरी के गुण गाए। इस तरह होते होते बहरहाल फिर खैबर जो था वो हज़रत अली के हाथों से फतह हो गया। और उसके बाद मरहब के बाद उसका भाई यासिर था, उसे भी इन्होंने मारा। इस पर फिर यहूद की हिम्मत ख़त्म हुई और किला फतह हुआ, और तकरीबन 93 यहूदी जो थे मारे गए और 20 मुसलमान शहीद हुए। इतनी ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त हुई थी यहूद को कि नबी सल्लम के पास आए और जैसे पनाह मांग ली कि मेरी जान बख्श दी जाए। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम्हारे ये बागात और ज़मीनें मुसलमानों के हवाले कर दो, इसके बदले में रहने की इजाज़त देंगे। यानी आप सोचिए, इन सारी बातों को पढ़ते हुए अगर हम मुसलमानों की हिस्ट्री को सामने रखें और आज के दौर को सामने रखें, हम कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों के पास रिसोर्सेज नहीं है, मुसलमान गरीब है? क्यों हम हर जगह दबते हैं? नबी सल्लम के दौर में तो हमेशा थोड़े मुसलमान भी जीत जाते थे। वजह क्या थी? कि उनके अंदर ईमान था, वो कभी झुकना नहीं चाहते थे, वो कभी ऐसी शरायत और कंडीशंस नहीं कबूल कर लेते थे जिसकी वजह से मुसलमानों का मुफाद कम हो जाए या उनको नुकसान दिया जाए। आज भी अगर हमारे अंदर सच्चा ईमान हो जाए तो ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आज हमारी नज़रें अल्लाह की बजाय गैरों पे लगी होती हैं ना। फलां के एड्स, फलां के हथियार लेने हैं, उससे हमने एटॉमिक एनर्जी लेनी है। अब होता है कि फिर वो हमें अपनी शरायत मनाएंगे, वो चीज़ें महंगी कर दें, वो हमसे जो भी कराएं करना पड़ता है। एक दफ़ा अगर नो कह के इंसान अगर अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो अब देखिए कि बहुत खैर हो सकती है। और खैबर ही की जंग वो थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी यहूद ने। एक शख्स सलाम बिन मुशकम था, तो उसने कहा अल्लाह के नबी आप हमारे घर दावत में आइए। अब देखिए अल्लाह के नबी का ज़र्फ, आपको पता है दुश्मनी है, जंग लगी हुई है, लेकिन दावत कबूल कर लेते थे, कभी भी इनकार नहीं करते थे। चले गए तो उसकी बीवी ज़ैनब बिनत हारिस जो थी उसने फिर खाने में जहर मिलाया हुआ था। अब अल्लाह के नबी सल्लम देखिए नबी थे, लोग कहते हैं उनको गैब पता है। पिछले ही सबक में हमने देखा था ना, शाहिदन हाजिर और नाजिर की जो बात करते हैं, आपके सामने जहर मिला हुआ सब है लेकिन आपको नहीं पता। एक आपके साथी थे बशीर बिन बरा, उन्होंने चख लिए दो तीन लुकमे, उसी की वजह से वो मर गए। लेकिन नबी सल्लम को खबर मिल गई कि उस खाने में जहर है तो फिर आपने छोड़ दिया। तो उस वक़्त तो आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर उसी के असर से आप कहते थे कि वो जहर हर साल मुझे तंग करता था और बिलाखर तो उसने मेरी जान ले ली। जब वो यहूदी पकड़ा गया तो कहने लगा अल्लाह के नबी हमने तो जान के मिलाया था, क्यों? कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो आपको पता चल जाएगा, अल्लाह आपको बता देगा, और अगर आप झूठे नबी हैं तो आपसे हमारी जान छुट जाएगी। देखिए जान की बाजी लेने वाले ने ये बात की, जब उसने ये बात कही तो अल्लाह के नबी ने उसको भी माफ कर दिया। लेकिन जो उसकी बीवी थी वो बशीर बिन बराक के कसास में फिर वो ज़ैनब बिनत हारिस मार दी गई थी, क्योंकि वो तो फौत हो गए थे ना, तो कत्ल का बदला कत्ल हुआ। और इस तरह जब खैबर फतह हुआ तो नबी सल्लम सफ़र के महीने में वापस आए, फिदक की तरफ गए। यानी पूरी कहानी है, आप पढ़ के देखिए सीरत को, आपको कितनी ही बातें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी कि इस्लाम कैसे कैसे फैला और वो क्या तरीक़ेकार थे कि जिसके ज़रिए से मुसलमानों को हमेशा फतह होती थी और मुसलमान जीत के आते थे। और आज क्या वजह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग उभर नहीं पाते, वो ईमान नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं लई सालल आमा हरजुन, और अंधे पर कोई सख्ती नहीं है, तंगी नहीं है। वला अलल आरजी हरजुन, और न किसी लंगड़े पर तंगी है। वला अलल मरीदी हरजुन, और न किसी बीमार पर तंगी है। वमै युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जो कि अल्लाह की इताअत करे और उसके रसूल की, तो वो उसको दाखिल करेगा ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और वमै यतवल्ला युअज्जिबहु अजाबन अलीमा, और जो कोई मुंह फेरेगा तो अल्लाह ताला उसको अजाब देगा, दर्दनाक किस्म का अजाब। यहाँ बता दिया कि कोई लंगड़ा यानी हैंडीकैप जितने भी लोग होते हैं, कोई लंगड़ा हो, अंधा हो या मरीज हो जो चल नहीं सकता, अगर वो ना जंग में दाखिल हो सके, शामिल हो सके, तो उन पे कोई पकड़ नहीं है। हरज मीन, जैसे उर्दू में भी अब कहते हैं ना, कोई हरज नहीं, चाहे आप ये काम ना करें। हरज तंगी को कहते हैं, कांटे को भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी कोई तंगी इन पे नहीं है। हाँ, अगर ये बात मानते हैं तो इनको भी अल्लाह ताला जन्नतों की खुशखबरियां देता है। यानी हर एक के लिए मुख्तलिफ तरह की बात है, हर बंदे को अल्लाह ताला एक तरह नहीं लेता, किसी का उज़र होता है। इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग ज़ाहर दीन के काम से पीछे रहते हैं तो उनकी कोई मजबूरी होती है, तो अल्लाह को उनके उज़र पता है। आज भी कई ऐसे लोग होंगे जो ज़ाहर दीन का काम नहीं करते हुए दिखते, लेकिन उनका दिल बहुत करता है। हो सकता है उनको इजाज़त नहीं, हो सकता है उनके हालात साथ नहीं देते, तो अगर उनके दिल में तड़प होगी तो अल्लाह ताला उनके लिए ज़रूर रास्ते बना लेगा, और जो मुंह फेरेगा तो अल्लाह ताला उसको दर्दनाक अजाब देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इन बातों को सुनने और मानने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों का बेहतरीन रंग दिखने लगे। यानी जब एक इंसान किसी भी काम का इरादा करता है ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद फिर उसके लिए रास्ते भी बना देता है। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे अल्लाह के काम में मुश्किल आए ना, तो आप क्या करें, अल्लाह ताला आपका काम है, मैंने तो करना है, आप करा लें, मैं तैयार हूँ। मेरे लिए मुश्किल है, मेरे हालात सही नहीं है, सूटेबल नहीं, आप मेरे लिए आसानी कर दें। आप देखेंगे कि गैब से आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आजकल तो हर बंदे का दिल चाहता है ना कि ट्रेंड सेटर बनो। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वो एक कपड़ा पहन के दिखाते हैं, फिर सारे वही पहनने लग जाते हैं ना, रिवाज फैशंस बदलते हैं। तो अगर हमारी ज़ात से कोई ऐसा काम दीन का शुरू हो जाए भी किसी और ने नहीं किया, तो हमारे लिए इसमें खुशी किस बात है ना। तला हमें तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक से जुड़े रहें आप। देखिए ये ऐसी चीज़ है ना, सुनते ही एकदम बंदे को लगता है हाय मेरा तो अमल ही नहीं, मैं क्या करूँ सुन के। फिर सुनते रहे, आप कहते हैं पहले तो चले अपनी बुराइयां नहीं पता थी, अब तो पता चल गई हैं, अब तो और गुनाह और अगर नहीं, ये भी शैतान का धोखा है। बस अब कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं ना, जैसे ऊपर से कोई आपको रोप डालता है तो आपने ऊपर चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है। तो जब आप चढ़ते हैं, बीच में आपको मुश्किल भी हो सकती है, कहीं कहीं आपके हाथ से रस्सी छूटने लगेगी, लेकिन तक आप उस रस्सी को पकड़े रखते हैं, एक वक्त है कि आप चढ़ जाएंगे। और जिसने रस्सी छोड़ी उसका अंजाम क्या है, और ज़्यादा नीचे गिरेगा ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमसे राज़ी हो जाए।